पृष्ठ संख्या 175, क्रांति का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ रिवॉल्यूशन। 1911 ईस्वी की क्रांति एक महान घटना थी। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन था तथा पहले न तो इससे मिलती जुलती कोई घटना हुई थी और न ही इसका कोई पूर्व दृष्टांत था। यह सच है कि मांचू राजवंश का भी वही हश्र हुआ जो उसके पहले के राजवंशों का हुआ था, परंतु इस बार एक अंतर था, सचमुच ही एक क्रांतिकारी अंतर। अब न तो कोई राजवंश था जिसे उत्तराधिकारी मिलता और न ही कोई सम्राट जो सिंहासनारूढ़ हो सके। वस्तुतः चीन के इतिहास में पहली बार गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना हुई। एक ऐसी संस्था जो 2000 वर्ष पुरानी थी को समाप्त करना कोई मामूली उपलब्धि न थी। यद्यपि इस विषय पर माओ तजतुंग कोई विशेषज्ञ नहीं थे, तथापि उनके इस मूल्यांकन में बहुत हद तक सत्यता है कि 1911 ईस्वी की क्रांति सही मायनों में एक जनतांत्रिक क्रांति की शुरुआत थी, क्योंकि इसने चीन में 200 से अधिक वर्षों से चल रहे छिंग राजवंश को उखाड़ फेंका, निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त किया, जनतंत्र के प्रति चीनी जनता की चेतना को तीव्र किया तथा उसके क्रांतिकारी संघर्ष को आवेग प्रदान किया। क्रांति का मूल उद्देश्य राजवंशीय प्रणाली को समाप्त करना तथा इसके स्थान पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था को लागू करना सफलतापूर्वक पूरा हो गया। युवान शरखाई द्वारा कुछ व्यर्थ प्रयासों के बावजूद पुरातन व्यवस्था फिर कभी जीवित न हो सकी। निस्संदेह 1911 ईस्वी की क्रांति ने नए युग की शुरुआत की। अगर क्रांति ने राजनीतिक अराजकता को जन्म दिया तो उसे इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि क्रांति के उपरांत कुछ समय तक अराजकता की स्थिति न रही हो तथा न ही विश्व में कहीं भी निरंकुश शासन से जनतांत्रिक शक्तियों के हाथों में सत्ता हस्तांतरण निर्बाध और संतुलित तरीके से हुआ। यह केवल संघर्ष से ही संभव होता है कि नई प्रगतिवादी जनतांत्रिक शक्तियां पुरातन गहरे पैठ परंपरावादी विचारों तथा संस्थाओं का जन्म लेती है। नई शक्तियों की ताकत का पता इस तथ्य से चलता है कि बाद में पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का कोई भी प्रयास सफल न हो सका। क्रांति ने राजवंशीय चक्र, डायनेस्टिक साइकिल तथा दिव्य अधिदेश, मैंडेट ऑफ हेवन को खत्म किया तथा वास्तव में परंपरावादी चीन के अंत की शुरुआत की। पृष्ठ संख्या 176। यद्यपि 1911 ईस्वी की क्रांति सामंतवाद को पूर्णतया समाप्त करने में असफल रही, तथापि इसने सामंतवाद को एक प्राणघातक आघात पहुंचाया, क्योंकि इसने छिंग शासन तथा निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था का अंत किया। 1911 ईस्वी की क्रांति कन्फ्यूशियसवाद, शिक्षा की परंपरावादी प्रणाली तथा साथ ही आर्थिक एवं राजनीतिक दर्शन के विरुद्ध बढ़ते संघर्ष की सूचक थी। यह चीन की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1919 ईस्वी का चतुर्थ मई आंदोलन वस्तुतः 1911 ईस्वी की क्रांति का ही तार्किक प्रतिफल था। विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं के विनाश का प्रयास करके क्रांति ने परंपरावादी शिक्षा, जिसने परंपरावादी संस्थाओं को जन्म दिया था, को भी विनष्ट किया। साथ ही देश की संप्रभुता तथा प्रादेशिक अखंडता को सुरक्षित रखने में असफलता के कारण शासक राज परिवार पर जो आक्रमण हुआ, उससे क्रांतिकारियों ने असमान संधियों तथा चीनी अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध आगे होने वाले विरोध का पूर्वाभास करा दिया था। 1911 ईस्वी की क्रांति का एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम था एक व्यवसायी वर्ग का उदय, जिसके पास पहले की तुलना में पर्याप्त ज्यादा शक्ति तथा प्रभाव था। अब उस पर पुरातन ढांचे की वे पाबंदियां जिन्होंने उनकी गतिविधियों को ढीला कर दिया था, कम थी। हालांकि अभी भी देशी उद्योग विदेशी व्यापारियों तथा उत्पादकों को मिले असमान विशेषाधिकारों के कारण अवरुद्ध था, लेकिन फिर भी अब दोनों के बीच आर्थिक प्रतिद्वंद्विता तीव्र हो गई थी। यह आर्थिक प्रतिद्वंद्विता रेल मार्ग निर्माण, खनन, बैंकिंग, कपड़ा उद्योग तथा अनेक अन्य चीजों में प्रदर्शित होती है। विदेशी संकट से छुटकारा पाने हेतु आधुनिकीकरण क्रांति की प्रमुख प्रेरक शक्ति था। यद्यपि संपूर्ण आधुनिकीकरण का उद्देश्य अपूर्ण ही रहा, तथापि गणराज्य ने इस राज्य को तथापि गणराज्य ने इस कार्य को जितना पुरातन व्यवस्था में संभव हो सकता था उससे काफी आगे बढ़ाया। 1911 ईस्वी की क्रांति आत्म सुदृढ़ीकरणकर्ताओं सेल्फ स्ट्रेंथनेस अथवा सुधारवादियों रिफॉर्मर्स से ज्यादा सफल रही, क्योंकि इसने पुरानी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था तथा संस्थाओं पर आघात किया। यह न तो आत्म सुदृढ़ीकरणकर्ता कर पाए जिन्होंने आधुनिक राजनीतिक एवं आर्थिक विचारों तथा व्यवस्थाओं को ठुकरा दिया था, और न ही सुधारवादी कर पाए जो आधारभूत कन्फ्यूशियसवादी सांचे में सिमटे रहकर ही परिवर्तन की मांग कर रहे थे। राष्ट्रवाद एक अन्य अति आवश्यक तत्व था जो क्रांति के दौरान उभर कर सामने आया। सुधारवादी आंदोलन चीनी राष्ट्रवाद का एक पहलू था। इसी प्रकार बॉक्सर आंदोलन भी चीनी राष्ट्रवाद का एक पहलू था, परंतु 1911 ईस्वी तक चीनी राष्ट्रवाद एक अस्पष्ट ठोस शक्ति बन चुका था, और इसका पहला निशाना छिंग शासन था जो विदेशी बर्बरों को दूर रखने में असफल हो गया था, जिससे आधुनिकीकरण की गति अवरुद्ध हुई। क्रांति से प्रेस को भी गति प्राप्त हुई। लियांग छिछाओ को सही ही चीन में आधुनिक पत्रकारिता का जनक माना जाता है, परंतु 1911 ईस्वी की क्रांति तथा निरंकुश व्यवस्था के अंत से पत्रकारिता के विकास का अवसर बढ़ गया। हालांकि युवन सरखाए ने शैशव काल में ही इसका गला घोटने का प्रयास किया। प्रेस द्वारा क्रांतिकारी विचार पहले से ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगे तथा 1911 ईस्वी के पहले क्रांतिकारियों तथा संविधानवादियों के बीच खींचातानी भी प्रेस के द्वारा ही संचालित हुई। क्रांति से राजनीतिक दलों को भी बढ़ावा मिला। दोहरा 10 डबल 10 विद्रोह के बाद कई राजनीतिक दल उभर आए जो शासन में हिस्सेदारी पाने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे थे। उनकी कई गतिविधियां बचकानी लग सकती है, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे जनतंत्र की बढ़ती भावना को प्रतिबिंबित कर रहे थे। क्रांति से एक नए वातावरण का निर्माण हुआ जिसकी सराहना वी आई लेनिन ने 1913 ईस्वी में इन शब्दों में की। नया चीन उत्तेजित राजनीतिक गतिविधियों की भूमि, सतेज जन आंदोलन तथा जनतांत्रिक लहर की रंगभूमि है। न्यू चाइना इज ए लैंड ऑफ सीथिंग पॉलिटिकल एक्टिविटी, द सीन ऑफ ए वायरली पब्लिक मूवमेंट ए डेमोक्रेटिक अपसर्ज। अगर 1911 ईस्वी की क्रांति द्वारा निरंकुश राजतंत्र को समाप्त न कर दिया गया होता तो नए वातावरण का बन पाना असंभव था। मेरी सी राइट इंगित करती है कि चीन ने केवल एक क्रांति देखी जिसकी मुख्य विशेषताएं आरंभिक 20वीं शताब्दी के अनुभव से जुड़ी हुई थी। इन विशेषताओं में मुख्य थी शिक्षित युवा वर्ग का निरंतर उत्कर्ष, स्त्रियों की असाधारण रूप से प्रमुख भूमिका, समस्त विदेशी शक्तियों के प्रति संदेह, दृढ़ नेतृत्व तथा क्रांतिजन्य अनुशासन। क्योंकि आरंभ में इसका अभाव एक त्रासदी थी, ऊंचे चरण तक पहुंचने के लिए एक प्रकार की महान उछाल की मनोवृत्ति, क्लासिकल मार्क्सवाद एवं धीमे परिवर्तन को मानने वाले अन्य सिद्धांतों के प्रति अरुचि, तथा यह विश्वास कि एक सैद्धांतिक रूप से शिक्षित संभ्रांत वर्ग के अतिमानवीय प्रयासों द्वारा निरीमानवीय ऊर्जा एवं इच्छा शक्ति से चीन साधारण चरणों को छोड़कर आगे बढ़ सकता है और अपने ढंग के एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, भी आरंभिक 20वीं शताब्दी के अनुभव में बद्धमूल थे। अतएव न केवल उत्तर 1919 ईस्वी काल की अपितु उत्तर 1949 ईस्वी काल की जड़ें भी 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में स्थित है। 1911 ईस्वी की क्रांति की अपनी कमजोरियां एवं असफलताएं भी थी। क्रांतिकारियों के पास अपने समय की राजनीतिक समस्याओं के लिए एक एकीकृत सोच का अभाव था, तथा क्रांति के पास छिंग राजवंश से निपटने तथा गणतंत्र की स्थापना के बाहर कोई सशक्त एवं मान्य दर्शन नहीं था। बड़े मुद्दों पर गंभीर मतभेद थे। कई लोग सुन यात्सेन के तीन सिद्धांतों के विरुद्ध थे। गुटबंदी के अतिरिक्त प्रांतीयता ने भी क्रांतिकारी संगठन को नुकसान पहुंचाया। आंतरिक संघर्षों ने उन्हें कमजोर बना दिया, और इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जैसे ही वे विजय के करीब पहुंचे, थुंग मेंग हुयेई ने अनेक सदस्य अपने उद्देश्य से डगमगा गए तथा विजय के फल को खाने के लिए अनुदारवादियों एवं सैन्यवादियों से गठजोड़ करने को तत्पर दिखाई पड़ने लगे। क्रांति की एक अन्य कमजोरी थी नेतृत्व की असफलता। समन्वय तथा संकटपूर्ण स्थितियों के सफल संचालन के अभाव के कारण वास्तविक शक्ति प्रांतीय विधानसभाओं के हाथों में चली गई। इन विधानसभाओं का स्वरूप एवं इनकी बनावट मुख्य रूप से अनुदारवादी थी, और इसी कारण वे सरकार के प्रगतिवादी गणतंत्रात्मक तथा जनतांत्रिक स्वरूप के विरुद्ध थी। हालांकि पुरातन संस्थाएं नष्ट हो चुकी थी, परंतु अभी नवोदित गणतंत्र के पास प्रभावशाली ढंग से कार्य करने के लिए कोई निश्चित संस्थागत ढांचा नहीं था। परिणाम यह हुआ कि जब गणतंत्र का आगमन हुआ तो यह रक्त मांस रहित एक नर कंकाल की भांति था। यूएन सरखाए की अवसरवादी मनोवृत्ति तथा उनका घटनाओं में जोर तोड़ बैठाना क्रांति पर एक धब्बा है। ऐसा माना जाता है कि यूएन ने क्रांति को अपने स्वयं के लाभ की दिशा में मोड़ दिया। दरबार तथा क्रांतिकारियों को छल साधन द्वारा ऐसी स्थिति मिले आए जहां वे एक दूसरे को निष्प्रभावी करने लगे तथा अपने श्रेष्ठ सैन्य शक्ति एवं विदेशी समर्थन का उपयोग इस तरह किया कि संघर्ष का लाभ उन्हें मिल जाए। सम्राट बनने की उसकी योजना का यह पहला पहल कदम था। इस प्रकार अर्नेस्ट यंग के विचार में चरम विडंबना की स्थिति आती है। संयुक्त चीनी गणराज्य के अध्यक्ष न तो क्रांतिकारी थे न ही गणतंत्रवादी। चूंकि क्रांति में सेना ने निर्णायक भूमिका अदा की तथा गणतंत्र में शक्ति यूएन सरखाए जैसे पहले दर्जे के सैन्यवादी के हाथों में चली गई, इसलिए इसके परिणाम स्वरूप एक विध्वंसकारी योद्धा सामंतवाद का प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त क्रांति की एक अन्य कमजोरी यह थी कि विदेशी शक्तियां प्रतिक्रिया की मुख्य वाहक साबित हुई, जबकि उन्हें बिना विरोध के ही यह सोचकर छोड़ दिया गया था कि वे चीन के अधिकारों का अतिक्रमण इसलिए कर रही थी क्योंकि चीन कमजोर था और इसके लिए मांचू उत्तरदायी थे। जन सहयोग तथा भागीदारी की कमी भी 1911 ईस्वी की क्रांति की बड़ी कमजोरियों में एक थी, क्योंकि केवल यही भागीदारी क्रांति को अवनति से रोक सकती थी। क्रांति का नेतृत्व मुख्यतः शिक्षित मध्य वर्ग ने किया, संभवतः चूंकि सरकारी प्रतिकार को रोकने हेतु गोपनीयता आवश्यक थी, इसलिए सर्वसाधारण को कभी भी कार्य प्रवृत्त नहीं किया जा सका। हालांकि क्रिस्को का रवैया कोई शत्रुतापूर्ण न था, बल्कि वे तो क्रांति के प्रति सहानुभूति का भाव रखते थे, क्योंकि सुनयात सेन के जन आजीविका पीपुल्स लिवलीहुड के नारे तथा थुंगमंग हुई द्वारा उन्हें क्रांति से जोड़ने के प्रयासों ने उन्हें क्रांति की ओर आकृष्ट कर दिया था। छन थिए चियेन के विचार में साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद ने बुर्जुआ वर्ग के सुलह समझौतों का लाभ उठाया एवं सम्मिलित रूप से 1911 ईस्वी की क्रांति की हत्या कर दी। परिणाम यह हुआ कि क्रांति ने केवल अंतिम सामंती राजवंश को ही समाप्त किया। इसने साम्राज्यवाद एवं सामंतवाद द्वारा होने वाले शोषण एवं उत्पीड़न का अंत नहीं किया। चीन अभी भी एक अर्ध औपनिवेशिक तथा अर्ध सामंती समाज बना रहा। बुर्जुआ जनतांत्रिक क्रांति के पूर्ण होने में अभी समय था। इन सारी कमियों के बावजूद 1911 ईस्वी की क्रांति को एक चक्रीय राजवंशीय परिवर्तन मानकर अथवा निचले दर्जे की क्रांति मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। अगर माओ तजतुंग के शब्दों में समापन किया जाए तो यह असंगत न होगा। सुन यात सेन द्वारा आरंभ की गई क्रांति की अपनी सफलताएं एवं असफलताएं दोनों थी। क्या 1911 ईस्वी की क्रांति एक सफलता न थी? क्या इसने सम्राट को पदच्युत नहीं किया? फिर भी यह इस अर्थ में असफल रही कि जहां इसने सम्राट को पदच्युत किया, वहीं इसने चीन को साम्राज्यवादी तथा सामंती उत्पीड़न में छोड़ दिया, जिससे साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी क्रांतिकारी कार्य अपूर्ण रह गए।